हमें क्रूज के अध्ययन के दो भागों को देखना है। पहला है क्रूज का अभिप्राय एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्य के मध्य मध्यस्थ भी एक ही है, मानव यीशु, जिसने अपने आप को ही मुक्ति धन के लिए दे दिया। अब प्रश्न यह है कि मसीह यीशु किसके लिए मरा। मैं आरंभ में ही कह चुका हूं कि जब कैल्विन के विचारों का विषय आता है तो वहां मतभेद है। अतः प्रश्न यही है कि मसीह किसके लिए मरा। मसीह सबके लिए मरा। क्रूस पर मसीह द्वारा मूल्य चुकाना पूरे संसार के लिए पर्याप्त है। अतः मसीह की मृत्यु हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं, इस विषय में कोई प्रश्न उठता ही नहीं। उसकी मृत्यु असंख्य लोगों के पापों के लिए पर्याप्त है। मसीह की मृत्यु द्वारा निवारण यानी मोक्ष। केवल वे जो अपनी मुक्ति के लिए मसीह पर विश्वास करते हैं वे चयनित जन हैं, जिन्हें हम कहेंगे कलीसिया के चयनित। ये शब्द नए नियम में है। अतः केवल वे जो मुक्ति के लिए मसीह में विश्वास रखते हैं क्रूस के लाभ को पाते हैं, अर्थात अपने जीवन में मुक्ति मेल को प्रभावी पाते हैं, जो मसीह में विश्वास के द्वारा ही संभव है। ये अपने आप नहीं हो जाता। यद्यपि मसीह सबके लिए मरा, सब अपने आप ही मुक्ति नहीं पाते हैं। आपको मसीह में विश्वास करना आवश्यक है। अब तीसरी बात, मसीह की मृत्यु की घोषणा करना। सब लोगों में सुसमाचार सुनाया जाना है। मेरे विचार में इन तीन बातों से सब लोग सहमत होंगे। अब यहां मतभेद का एक प्रश्न है। क्या परमेश्वर की यह इच्छा थी कि वो मसीह में सब लोगों को मुक्ति दिलाए, या परमेश्वर अपने कुछ चयनित जनों को ही मुक्ति दिलाना चाहता था? क्या मसीह ने सबके लिए मूल्य चुकाया या केवल चयनित जनों के लिए? कैल्विन के विचारों में दो शब्दावलियां हैं, सीमित प्रायश्चित और असीमित प्रायश्चित। परंतु मैं यहाँ पर शब्दावलियों की अपेक्षा सार्वरिक प्रायश्चित और निश्चित प्रायश्चित शब्दावली काम में लूंगा। मेरे विचार में सीमित शब्द एक अच्छा शब्द नहीं है, उनके लिए भी जो इसका समर्थन करते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि क्रूस के सौंदर्य को सीमित किया जाए। सीमित से हमारा अभिप्राय यह है कि मसीह में विश्वास रखने वालों को ही क्रूस का लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रायश्चित को हम सीमित करते हैं। जब तक सब मनुष्य मुक्ति नहीं पाते, प्रायश्चित को सीमित ही समझा जाता है। अब हम ये दोनों पक्ष को, निश्चित और सार्विक प्रायश्चित को देखेंगे। सार्विक प्रायश्चित में मसीह सब मनुष्यों के पाप का दंड चुकाने के लिए मरा। धर्मशास्त्र में कुछ तथ्य दिए गए हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं। परमेश्वर सब मनुष्यों से प्रेम करता है और सबको मुक्ति दिलाना चाहता है। आप धर्मशास्त्र में उन संदर्भों को देखें जहां पाप के निमित्त मसीह की मृत्यु का उल्लेख है, और उसकी सामान्य भाषा भी देखिए। यूहन्ना 3:16 इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पहला यूहन्ना 2:2 और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। पहला यूहन्ना 4:14 हमने देखा है और गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जगत शब्द पहला यूहन्ना 28 में बार बार आया है, जिसमें यूहन्ना का तात्पर्य है संपूर्ण ब्रह्मांड। मसीह संपूर्ण ब्रह्मांड का मुक्तिदाता होने के लिए मरा। हमारा बाइबल पाठ पहला तिमुथियुस 2:5-6 ये हम सब के लिए मूल पाठ है। अतः सामान्य प्रायश्चित यह है कि परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करता है और उन सबकी मुक्ति चाहता है। इस कारण यदि हम कहें कि मसीह केवल कुछ चुने हुए मनुष्यों के पापों का दंड चुकाने आया, तो ये कल्पना से परे है। परमेश्वर का संपूर्ण मानव जाति से प्रेम ये सुनिश्चित करता है कि संपूर्ण मानव जाति के पापों का मूल चुकाया जा चुका है। यूहन्ना 1:29 में लिखा है कि परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठा ले जाता है। हम अपनी आशा जीवित परमेश्वर में रखते हैं, जो संपूर्ण मानव जाति का मुक्तिदाता है, विशेष करके उनका जो विश्वास रखते हैं। ये सार्वभौमिक दृश्य है। निसंदेह विश्वासी इस दृश्य से जुड़ते जाते हैं, परंतु सत्य यही है कि मनुष्य संपूर्ण मानव जाति का मुक्तिदाता है। इब्रानियों 2:9 परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। दूसरा पत्रस 2:1 जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और ध्यान दें उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। अर्थात झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, इनको भी मसीह ने मोल लिया है। इससे स्पष्ट होता है कि मसीह ने सबको मूल्य देकर अपना लिया है, जिनमें ये झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता भी हैं। अगला चरण यह है कि हमारे जीवन में मसीह की मृत्यु के लाभ प्राप्त करने के लिए उसमें विश्वास लाना आवश्यक है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो उसमें विश्वास रखते हैं अनंत जीवन पाते हैं। अपने मुंह से अंगीकार करो कि मसीह प्रभु है और अपने मन में विश्वास रखो कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित उठाया, तब तुम मुक्ति पाओगे। अंत में ये कि संपूर्ण मानव जाति में ये सुसमाचार सुनना है, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई मुक्ति पा ले। अतः स्पष्ट है कि समस्त जातियों में शिष्य बनना आवश्यक है। आप में आत्मा का अंतर्वास है, आप पृथ्वी के छोर तक जाएं। अब यदि सुसमाचार आपके पास ना हो तो संपूर्ण मानव जाति में प्रचार करना संभव कैसे है? यदि मसीह कुछ चुने हुए मनुष्यों के लिए मरा तो हम कैसे सब में ये सुसमाचार सुनाएंगे कि मसीह उनके लिए मरा? यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे और थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने कहा सब लोगों, उसने ये नहीं कहा बोझ से दबे और थके मांदों में से कुछ जो मैंने चुने हैं। अतः सार्विक प्रायश्चित का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने क्रूस का चयन इसलिए किया कि संपूर्ण मानव जाति के लिए मुक्ति संभव हो जाए। अब कुछ देर के लिए हम सीमित प्रायश्चित की चर्चा करेंगे। मसीह मरा कि उसके चुने हुओं के पाप के दंड का मूल्य चुकाए, जिससे कि उसके चुने हुओं की मुक्ति निश्चित हो जाए। परमेश्वर अपने चुने हुओं से प्रेम करता है और क्रूस में उनकी मुक्ति का निरूपण करता है। ये काम उसने पहले से ही निर्धारित किया हुआ है। इफिसियों 1:3-14 में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, और ध्यान दें कि वो क्या कहता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। इसके आगे वो मसीह के बारे में कहता है, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। अब पद 11 में देखिए, उसी में जिसमें हम भी उसी मंशा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और अब आत्मा मिल गया है और जिस पर तुमने विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यहां सीमित प्रायश्चित की बात है। पिता ने जगत की सृष्टि से पूर्व मनुष्य को चुना, उससे लगाव रखा, उसे लेपालक लिया, पूर्व निश्चित किया कि उसके अपने ठहरे। आपके पास आत्मा है जो इसे सच्चाई बनाता है और अनंत काल के लिए मोहर लगाता है। अब प्रश्न यह है कि यदि पिता और पवित्र आत्मा ने कुछ ही लोगों को चुनकर अलग किया है, अब प्रश्न यह है कि यदि पिता और पवित्र आत्मा ने कुछ ही लोगों को चुनकर अलग किया हुआ है, तो पुत्र क्यों सबके लिए अपनी जान दे, उनके लिए जिन्हें पिता ने पुत्र होने के लिए पहले से नहीं चुना? इससे तो पिता और पुत्र एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। पुत्र सबके लिए मुक्ति ला रहा है और पिता के कुछ चुने हुओं में ही रुचि रखता है। अतः सीमित प्रायश्चित का परिदृश्य यह है कि परमेश्वर अपने चुने हुओं से प्रेम करता है और उनके लिए क्रूस पर मुक्ति का प्रावधान करता है, अर्थात मसीह निश्चय ही अपने चुने हुओं के लिए मरा कि वे मुक्ति पाएं। मत्ती 1:21 में लिखा है कि उसका नाम यीशु था, क्योंकि वो अपने लोगों को पाप से मुक्त कराएगा। मुक्ति संभव नहीं बनाएगा, उन्हें मुक्ति दिलाकर रहेगा। यूहन्ना 6:37 में यीशु ने स्वयं कहा, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, और मेरे भेजने वाले पिता की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, अर्थात वो हर एक मनुष्य जिसे पिता मेरे निकट लाता है मैं उसे ना खोऊं। यहां सीमित मनुष्यों का समूह है। प्रेरितों के काम 20:28, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, और तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। तीतुस 2, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यहाँ निर्दिष्ट प्रायश्चित के पक्षधर कहेंगे कि प्रत्यक्ष है, सबको मुक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7-9 स्पष्ट करता है कि सब मनुष्य मुक्ति पाए हुए नहीं होंगे। अब मेरे साथ विचार करें, यदि मसीह सब मनुष्यों के पापों का मूल चुकाने के लिए मरा तो इसका अर्थ यह है कि उसने सबके पापों का प्रतिकार चुका दिया, तो कुछ लोग नरक में क्यों जाएंगे? आप कहेंगे कि उन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास नहीं किया और अविश्वास पाप है, परंतु मसीह ने सबके पाप का मूल चुका दिया है, अविश्वास के पाप का भी, तो मनुष्य नरक में क्यों जाएगा? यही कारण है कि इब्रानियों 2:17 में लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। ये प्रायश्चित का परिदृश्य है। इब्रानियों 2 के अनुसार सबके पापों का मूल चुकाया जा चुका है और परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया है। मनुष्य के पापों का मूल चुकाया जा चुका है और परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया, तो मनुष्य नरक में क्यों जाएगा? यही तर्क सीमित प्रायश्चित के पक्षधरों का है। अतः वे कहते हैं कि हमारे पास 3 विकल्प हैं। पहला, मसीह ने सब मनुष्यों के सब पापों के प्रति मनुष्य के क्रोध को शांत कर दिया है। अब परमेश्वर क्रोधित नहीं है, इसीलिए सब मनुष्य स्वर्ग जाएंगे। हम जानते हैं कि सत्य ये नहीं है। दूसरा, मसीह ने कुछ लोगों के कुछ पापों का मूल चुकाया है, इस स्थिति में तो कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, यह भी सत्य नहीं है। अब एक ही विकल्प शेष रहता है, मसीह ने कुछ मनुष्यों के सब पापों का मूल चुका दिया है। यहां एक प्रश्न है, क्या परमेश्वर सदैव अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है? यदि परमेश्वर सदैव अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है और मसीह सबको मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से मर गया, तो सब मनुष्यों को मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्या परमेश्वर ने अपना उद्देश्य पूरा किया या नहीं? अय्यूब कहता है कि परमेश्वर कहता है, मेरी मुक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। जॉन ओवेन ने कहा, यदि मसीह सबके लिए मरा और सबने मुक्ति नहीं पाई, तो मसीह की मृत्यु बेकार है, जो संभव नहीं। क्या आप कहेंगे कि मसीह का क्रूस निष्प्रभाव है, या ये कि वो मुक्ति को संभव बनाने के लिए मरा और अब बैठकर प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई उसका निमंत्रण स्वीकार करे? क्या ये मसीह के ईश्वरत्व को घटा देता है? अतः मसीह कुछ विशेष जनों, चयनित जनों को बचाने के उद्देश्य से मरा। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। मैं अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता हूँ। यूहन्ना 17 में वो कहता है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें उसने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। वो मसीही विश्वासियों के लिए विनती कर रहा है, अर्थात वो सबके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। अब प्रश्न ये है, क्या मसीह यीशु उनके लिए मरा जिनके लिए उसने प्रार्थना नहीं की थी क्रूस पर चढ़ाए जाने से पूर्व? यहाँ वो हम निश्चित मनुष्यों के लिए प्रार्थना कर रहा था। अब रोमियो 8 में देखिए, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। ये मसीह यीशु के लिए कही गई है। इससे भी बढ़कर मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? इसके अंत में वो कहता है कि जगत में कोई भी अवस्था हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग नहीं कर सकेगी। क्या आप इसे देख पाए? ये उस गद्यांश के मध्य में है। अतः ये उन लोगों का उल्लेख कर रहा है जिन्हें परमेश्वर ने चुन लिया था और जिनका मुक्तिदाता मसीह है, जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थता करता है। इस पर आधारित होकर वे जो निर्दिष्ट प्रायश्चित का पक्ष करते हैं कहेंगे कि मसीह में विश्वास परमेश्वर की ओर से पूर्व नियत है और मसीह ये वरदान चयनित जनों के उद्धार के लिए लाया। यहां आकर वाद विवाद कुछ उग्र हो जाता है। प्रेरितों के काम 18 में अपुलमेस अखाया जाना चाहता था, इस कारण भाइयों ने उसे प्रोत्साहित किया और वहां के शिष्यों को पत्र लिखा कि उसका स्वागत किया जाए, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। उन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया, क्योंकि तुम्हें ये मसीह की ओर से प्राप्त है और उसमें विश्वास ही नहीं करो, वरन उसके लिए कष्ट भी सहो। आपको ये वरदान है कि उसमें विश्वास करें। विश्वास भी एक वरदान है। विश्वास हमें अनुग्रह से प्राप्त होता है। सीमित प्रायश्चित के समर्थक कहते हैं कि विश्वास स्वयं ही एक वरदान है जो धर्मशास्त्र आधारित है। आप विश्वास कर ही नहीं सकते यदि आप पर अनुग्रह ना हो। आप अपने पापों में मृतक हैं। यदि मरे हुए हैं तो आप जीवित कैसे रहेंगे? आपको विश्वास करने के लिए भी अनुग्रह चाहिए। जीआई पैकर वो सार्विक और सीमित प्रायश्चित में तुलना करते हुए कहते हैं, कोई मुक्ति को परमेश्वर का कार्य कहता है तो कोई उसे मनुष्य का कार्य कहता है। कोई विश्वास को परमेश्वर की मुक्ति का वरदान कहता है तो कोई उसे मुक्ति के निमित्त मनुष्य का योगदान कहता है। कुछ लोग विश्वासियों की मुक्ति का महिमान्वन परमेश्वर को देते हैं तो कुछ लोग इस कार्य की प्रशंसा को मनुष्य और परमेश्वर में बराबर बराबर बांट देते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर ने मुक्ति के उपकरण को बनाया और मनुष्य को विश्वास के द्वारा उसे काम में लेना है। सामान्य प्रायश्चित के बारे में वे कहते हैं, हम मसीह को मुक्तिदाता उद्घोषित करते हैं, तदापि हम अंततः कहते हैं कि उसने मुक्ति का निरूपण तो कर दिया, परंतु उसने ये हम पर छोड़ दिया कि हम अपने स्वयं के मुक्तिदाता बन जाएं। ये ऐसा है कि हम परमेश्वर के मुक्ति के अनुग्रह और मसीह के मुक्ति के सामर्थ्य को ऊंचा उठाना चाहते हैं, इसीलिए हम ये उद्घोषणा करते हैं कि परमेश्वर का मुक्तिदायक प्रेम प्रत्येक मनुष्य के लिए उपलब्ध है और मसीह ने प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने प्राण दिए। तदुपरांत सर्वमुक्तिवाद के विचार से बचने के लिए हम अपने उन सब विचारों का त्याग करना चाहते हैं जो हम तक अब तक प्रतिवादित करते आ रहे हैं और कहते हैं कि परमेश्वर और मसीह के द्वारा किया गया कोई भी कार्य हमें मुक्ति नहीं दिला सकता जब तक कि हम उसमें योगदान न दें। अतः पैकर कहते हैं कि हमारी मुक्ति में जो निर्णायक कारक है वो है हमारा योगदान, जिसके आधार पर मसीह हमें मुक्ति दिलाता है। इसका अर्थ वास्तव में क्या है? ये कि हम मसीह की सहायता से अपने आप को मुक्त कराते हैं। अतः चयनित जनों की मुक्ति के लिए यीशु द्वारा खरीदे गए वरदान में विश्वास परमेश्वर द्वारा पूर्व नियुक्त साधन है। यह हमारा योगदान नहीं है, सब कुछ ही परमेश्वर का योगदान है। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि सुसमाचार प्रचार सब मनुष्यों में किया जाए, क्योंकि कुछ लोग निश्चित रूप से मुक्ति पाएंगे। अब कुछ मनुष्य हैं जो सीमित प्रायश्चित को उस सीमा तक ले आते हैं कि हमें प्रचार नहीं करना है, परंतु सीमित प्रायश्चित के समर्थकों में से अनेकों ने, जैसे चार्ल्स स्पर्जन, जॉर्ज व्हाइटफील्ड आदि ने मनोवेश और निष्ठापूर्वक मनुष्यों में सुसमाचार प्रचार किया कि वे मसीह में आ जाएं। उनका कहना था कि वे सबको सुसमाचार सुनाते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि चुने हुए कौन हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा उसे स्वीकार करेंगे। कलीसियाई इतिहास बड़ा रोचक है। जॉर्ज व्हाइटफील्ड एक प्रचारक थे और जॉन वेस्ली भी उसी युग के प्रचारक थे। इस विषय पर दोनों के विचार अलग अलग थे, उनमें बड़ा रोचक वाद विवाद होता था। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि ये ना तो हाँ है और ना ही ना है। मैं संपूर्ण नम्रता से कहता हूं कि हम उस लंबी कतार में हैं जिसमें अनेक भाई और बहन हमसे आगे जा चुके हैं और इन विषयों पर अनेक वाद विवाद हुए हैं, परंतु परमेश्वर ने उन्हें उनके विचारों के साथ ही काम में लिया है। मैं एक पासवान होने के कारण इस विषय को यथासंभव परमेश्वर के वचन के आधार पर देखता हूँ। परमेश्वर की इच्छा के बहुमुखी बोध। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु क्रूस उठाए और मारा जाए। प्रेरितों के काम 2:23, क्रूस के बारे में सोचें। यीशु उत्पीड़कों के हाथ सौंपा गया, जो परमेश्वर के उद्देश्य और पूर्व ज्ञान के अनुसार था, और दुष्टों ने उसे क्रूस पर कीलों से ठोक कर मारा था। अतः ये परमेश्वर की इच्छा थी कि मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाए। इसका अर्थ क्या ये हुआ कि हत्या करना परमेश्वर की इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा के बहुमुखी बोध, इसे दो प्रकार से सोचिए। पहली, परमेश्वर की प्रत्यक्ष इच्छा जो वो उद्घोषित करता है, उसका लिखित वचन। वो कहता है, मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूं, अर्थात तुम्हें ये करने के लिए बुलाता हूं, ये मेरा वचन है, ये मैं घोषणा करता हूं। पहला तिमुथियुस 3:4 और दूसरा 3-4 में वो अपनी इच्छा प्रकट करता है कि वो सब मनुष्यों को मुक्ति दिलाना चाहता है और सत्य के ज्ञान में लाना चाहता है। ये उसकी इच्छा है, परंतु प्रश्न यह है कि क्या सब मनुष्य मुक्ति और सत्य का ज्ञान पाते हैं? उत्तर है नहीं। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती है? नहीं, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की प्रत्यक्ष इच्छा उसकी अप्रत्यक्ष इच्छा से अलग है। उसकी प्रत्यक्ष इच्छा उसका लिखित वचन और उसकी अप्रत्यक्ष इच्छा वो है जो वास्तव में पृथ्वी पर होता है। वो हमें पाप करने की आज्ञा नहीं देता है। क्या पृथ्वी पर पाप है? हाँ, उसकी प्रत्यक्ष इच्छा है पाप मत करना। उसकी अप्रत्यक्ष इच्छा है पाप पृथ्वी पर है और उसके नियंत्रण में है। भजन 139 में लिखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। देखिए उत्पत्ति 50:22, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। क्या परमेश्वर ने यूसुफ के भाइयों से कहा था कि वे उसे दासत्व में बेच दें? नहीं, परंतु उसकी अप्रत्यक्ष इच्छा ये थी कि अंत में यूसुफ का पूरा परिवार उसके द्वारा अकाल से बचाया जाए। यहाँ परमेश्वर की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इच्छा दोनों विहित है। यहाँ परमेश्वर की इच्छा के दो अभिप्राय हैं। ये दोनों एक साथ कैसे पूरे होते हैं, ये एक भेद की बात है। परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है। परमेश्वर पूर्ण रूप से प्रभु है। आप और मैं परमेश्वर को अचेत नहीं पकड़ सकते। परमेश्वर सर्वोपरि शासक है, परंतु मनुष्य का भी कुछ उत्तरदायित्व है। मनुष्य के भी जी हाँ उत्तरदायित्व है। रोमियो 9, योहन्ना 15, इफिसियों 1 में परमेश्वर की प्रभुता के बारे में हम देख चुके हैं। हम सबका प्रभु है। दूसरी ओर धर्मशास्त्र ये नहीं कहता कि हम रोबोट हैं जो परमेश्वर के आदेशों पर चलते हैं। दूसरी ओर ये मनुष्य की नियति भी नहीं है कि जो भाग्य में लिखा है वो होगा। इस परिदृश्य में परमेश्वर की प्रभुता और मनुष्य का उत्तरदायित्व दोनों निहित है। हम चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रेरितों के काम 2:23 में मनुष्य का चुनाव देखिए कैसा है। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। ये परमेश्वर की प्रभुता का विवरण है। वो बैठकर यह आशा नहीं रखता कि मनुष्य उसके पुत्र को क्रूस पर चढ़ाएगा। परमेश्वर ने यह पूर्व निर्धारित किया था कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया जाए, परंतु उसे क्रूस पर चढ़ाने वाले रोबोट नहीं थे, वे मनुष्य थे जो अपने चुनाव के उत्तरदायी थे। अब चुनाव करने के विषय ऐसा है कि हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। यद्यपि हम रोबोट नहीं हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार हमारा चुनाव वास्तविक है, परंतु हम स्वतंत्र नहीं हैं, अर्थात हम ऐसा काम नहीं कर सकते जिसके बारे में परमेश्वर नहीं जानता, जो उसने सोचा ही नहीं कि हो जाएगा। तदापि हमारे चुनाव वास्तविक हैं, हम प्रतिदिन चुनाव करते हैं। हम मनुष्य को तो अपने चुनाव का दोष दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर को नहीं। निसंदेह वो प्रभुता संपन्न है, उसका उत्तरदायित्व हमारा ही है। हमारे चुनाव के परिणाम उत्तरदायित्व से पूर्ण एवं वास्तविक होते हैं। अब प्रश्न ये है, परमेश्वर अपनी प्रभुता और मनुष्य के उत्तरदायित्व का संयोजन कैसे करता है? हम परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले अपने कर्म के उत्तरदायी थे। आप और मैं अपने पाप के उत्तरदायी हैं। यद्यपि हम परमेश्वर की प्रभुता के अधीन पाप करते हैं कि निश्चय ही अपने पाप के उत्तरदायी हैं। हम प्राकृतिक, नैतिक और बौद्धिक रूप से परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं। देखिए प्रेरितों के काम 13:48। ये सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। अन्य जातियों ने विश्वास किया। परमेश्वर की प्रभुता में उनके लिए अनंत जीवन नियत था, परंतु उनका उत्तरदायित्व था कि वे विश्वास करें। यहां हम परमेश्वर की इच्छा का बहुमुखी बोध देखते हैं। इसके बाद आता है परमेश्वर के प्रेम के बहुमुखी आयाम। परमेश्वर प्रेम है, इसका अर्थ क्या है? धर्मशास्त्र में दिए गए परमेश्वर के प्रेम के 5 विभिन्न पक्षों को देखिए। पहला, त्रिएक परमेश्वर में उसका प्रेम। हम देखते हैं कि पिता पुत्र से प्रेम करता है और पुत्र पिता से प्रेम करता है। ये त्रिएकता में परमेश्वर का प्रेम है। कभी कभी परमेश्वर के प्रेम का वर्णन इसी से किया जाता है। दूसरा, संपूर्ण सृष्टि के लिए परमेश्वर का प्रेम। बाइबल परमेश्वर के इस प्रेम का उल्लेख करती है। वो आकाश के पक्षियों से भी प्रेम करता है, वो उनकी सुधि लेता है। तीसरा, धर्मशास्त्र संपूर्ण संसार के प्रति परमेश्वर के प्रेम की चर्चा करता है। वो संसार में सब मनुष्यों से प्रेम करता है। चौथा, धर्मशास्त्र में परमेश्वर के चुने हुए मनुष्यों के लिए उसके विशेष प्रेम का उल्लेख है। देखिए व्यवस्था विवरण क्या कहती है। परमेश्वर ने तुमसे इसलिए चित नहीं लगाया और प्रेम नहीं किया कि तुम अन्यों से संख्या में अधिक थे, तुम तो सबसे कम हो। परंतु इसलिए किया क्योंकि प्रभु ने तुमसे प्रेम किया और तुम्हारी पुरखाओं से की गई प्रतिज्ञा को पूरा किया और तुम्हें शक्तिशाली भुजा के बल पर बाहर लाया, दासत्व के देश से, मिस्र के राजा फिरौन के अधिकार से। उसने कहा कि वो इज़राइल से प्रीति रखता है। व्यवस्था विवरण 10 और मलाकी में भी यही कहा गया है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। अब आइए नए नियम में देखते हैं, इफिसियों 5:25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। 5वां, परमेश्वर का शर्त रहित प्रेम। क्या परमेश्वर का प्रेम शर्त रहित है? इसका उत्तर देने से पूर्व धर्मशास्त्र के इन संदर्भों को देख लेते हैं। परमेश्वर कहता है कि जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनकी हजारों पीढ़ियों से वो प्रीति रखता है। यूहन्ना 15:9-10, यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में अव्यवस्थित रहोगे। प्रभु यीशु मसीह की करुणा की बाट जोहते हो तो आज्ञा पालन द्वारा परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। अब यहाँ रूढ़िवाद की बात आती है, हमें अति सतर्क रहना है। परमेश्वर का प्रेम शर्त रहित है, सच है या गलत? जहां तक संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण जगत से उसके प्रेम की बात आती है तो ये सही है, परंतु शर्त रहित प्रेम के विषय में नहीं। धर्मशास्त्र में परमेश्वर का प्रेम प्रायः शर्त रहित दिखाया गया है। यदि हम कहें परमेश्वर सबसे बराबर प्रेम करता है तो क्या ये सच है या गलत है? हाँ, वो संपूर्ण जगत से प्रेम करता है, सब लोगों से। ये उसका सर्वव्यापी प्रेम है। क्या वो सबसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा पुराने नियम में इज़राइल से करता है? कदापि नहीं। हमें यहाँ रूढ़िवाद से सतर्क रहना है। आप कहेंगे मुझे नहीं समझ आता कि इसका संबंध किससे है। इसका संबंध है मसीह के क्रूस के बहुमुखी उद्देश्यों से। मैं अपने संपूर्ण विचार यहाँ केंद्रित करना चाहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का प्रेम, मसीह का क्रूस। धर्मशास्त्र के आधार पर मैं कहूँगा कि यीशु सबके लिए मरा है। वो सबके लिए मरा, अर्थात उसकी मृत्यु संपूर्ण संसार के पाप ढांकने के लिए बहुत है। ये मनुष्य जाति के प्रति परमेश्वर का सामान्य प्रेम है। उसकी इच्छा है कि सब मन फिर आए। यही धर्मशास्त्र की शिक्षा है। क्रूस के द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करता है और अपेक्षा करता है कि सब मनुष्य उसमें विश्वास करें। ये उसकी प्रत्यक्ष इच्छा है। अतः उसके साधारण प्रेम में उसकी प्रत्यक्ष इच्छा ये है कि यीशु सबके लिए मरा। अब यदि हम यहीं रुक जाएं तो उचित नहीं होगा। यीशु अपने चुने हुओं, अपनी कलीसिया के लिए मरा, अर्थात उसकी मृत्यु उन्हीं पर प्रभाव डालती है। परमेश्वर के मन में चुने हुओं के लिए विशेष प्रेम है। यही धर्मशास्त्र के पुराने नियम और नए नियम की शिक्षा है। अतः परमेश्वर क्रूस के द्वारा अपने लोगों को क्षमता और सामर्थ्य प्रदान करता है कि वे सब उसमें विश्वास करें। ये परमेश्वर की अप्रत्यक्ष इच्छा है, उसका ईश्वरीय विधान। अब होता यह है कि सब उसमें विश्वास नहीं करते। उसने ये कहा है कि सब उसकी ओर मुड़े, ये नहीं कहा कि सब उसमें विश्वास करें। ये ईश्वरीय विधान की उसकी इच्छा है। परमेश्वर क्रूस के द्वारा अपने लोगों को क्षमता एवं सामर्थ्य प्रदान कर रहा है कि उसमें विश्वास रखें। ये हमें कहाँ लेकर जाता है? बहुमुखी अभिप्राय या बहुमुखी आशय। परमेश्वर के 3 बहुमुखी अभिप्राय हैं। पहला, हम साहसपूर्व कहते हैं कि क्रूस पर मसीह की मृत्यु संपूर्ण संसार के पापों के लिए बहुत है। हम इसे किसी भी प्रकार कम नहीं मानते हैं। दूसरा, हम नम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं कि मसीह की मृत्यु का अनुग्रह चुने हुओं को मुक्ति दिलाता है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये विचार हम सबको घुटनों पर ले आता है, क्योंकि मुक्ति को संभव बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। ये सब उसके अनुग्रह, उसकी महिमा के निमित्त है, और विश्वास करने की हमारी क्षमता भी मसीह द्वारा लहू से खरीदी गई है। ये अथाह है, आवरणीय है, परंतु सत्य यही है कि अपनी मुक्ति में मेरा कोई योगदान नहीं है। मसीह ने मुझे मुक्ति दिलाई है, उसने मुझे खरीद लिया है, उसने मेरे मन में अनुग्रह का कार्य किया है, और इसका वर्णन करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये एक दीनता का विचार है और दीन बनाता है। अब ये सुसमाचार प्रचार के संबंध में क्या अर्थ रखता है? हम निर्भय होकर सब जातियों में मसीह के क्रूस का प्रचार करते हैं। हम सबको ये शुभ संदेश सुनाते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और वो उनको मुक्ति दिलाना चाहता है। क्या आप ये कहने को तैयार हैं? निश्चय ही। धर्मशास्त्र संदेश देता है कि हम प्रचार करें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और आपको मुक्ति दिलाना चाहता है। ये उसकी प्रत्यक्ष इच्छा है। वो चाहता है कि मनुष्य मन फिराए। क्या परमेश्वर सबसे प्रेम करता है? जी हाँ। क्या परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य मुक्ति पाए? निसंदेह हाँ। इस कारण हम शुभ संदेश साहसपूर्वक सुनाते हैं। हम गारंटी के साथ सुसमाचार सुनाते हैं, और ये गारंटी है विश्वास करना और मुक्ति पाना। ये संभवता नहीं है। प्रकाशित वाक 7 में सब जातियां, सब कुल, सब गोत्र और सब धर्म उसका स्तुतिगान करते हैं। आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप इस पृथ्वी पर दूरस्थ अगम स्थानों में जाकर जन समुदाय को सुसमाचार सुनाएं और विश्वास रखें कि कोई न कोई उस दिन अवश्य परमेश्वर के सिंहासन के सामने उपस्थित होगा। मसीह ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक जनजाति, मानव समुदाय और भाषा वहां इकट्ठे होकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। अतः ये एक महान विश्वास है। अतः हम अपने काम के स्थान पर, अपने घर पर, अपने पड़ोस में निर्भर होकर सुसमाचार सुनाते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि इस सुसमाचार प्रचार में मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य है। ये संभावना नहीं है, ये निश्चित है। हम अपने अध्ययन के अंत में पहुंच चुके हैं। क्रूस का प्रभाव, गलातियों 6:14। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं आशा करता हूं कि ये पद आपको अधिक स्पष्ट समझ में आएगा। ये एक विचित्र वक्तव्य है, क्रूस में मेरे गर्व की बात। ये वैसे ही है जैसे हम कहें मैं फांसी में गर्व करता हूं या करती हूं। क्रूस में ऐसी क्या बात है कि हम ये कहें कि मैं इसे महिमा की बात समझता हूं, मैं गर्व करता हूं, मैं इससे अभिभूत हूं और मैं इसके प्रति मनोवेग से पूर्ण हूं। ये सब हमारे मसीह के क्रूस में सिद्ध होती हैं। हम मसीह के क्रूस में गर्व करते हैं। इसके 7 कारण हैं। पहला, क्रूस हमें अपने पुराने मनुष्यत्व के सामने लाकर खड़ा करता है। देखें इफिसियों 2, इसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधी और पापों के कारण मरे हुए थे, क्रोध के भाजक थे। क्रूस हमें स्मरण कराता है कि पाप कैसा भयंकर होता है, और परिणाम स्वरूप क्रूस हमें सुरक्षित करता है। क्रूस हमारे भ्रमित आशावाद में फंसने से बचाता है। क्रूस आत्म उन्नति, विकास आदि विचार से मेल नहीं खाता है। क्रूस में अभिमान का स्थान नहीं है। यही कारण है कि हम क्रूस को अपनाकर अपने मसीही जीवन के साथ अन्य सांसारिक बातों में लग जाएं। सीजे महाने ने कहा, क्रूस हमारे जीवन की हम श्रेणी नहीं है, वो एक ऐसी इमारत है जिसमें सिर्फ श्रेणियां हैं। जीवन का प्रत्येक पक्ष क्रूस की उपस्थिति में है। यही कारण है कि हम उसे त्याग नहीं सकते। हम क्रूस से सत्य को जितना अधिक जानेंगे, उतना ही अधिक हम पाप से घृणा करेंगे, और उतना ही अधिक हम अपने आप को पुराने पापों में जाता देख पाएंगे। नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहता। पवित्रता में हमारे विकास की कुंजी ही क्रूस है। हमें इसकी घोर आवश्यकता है। आज हम पाप के प्रति अत्यधिक चेतनाहीन हैं। हम टीवी के सामने बैठते हैं, फिल्म देखते हैं जहां परमेश्वर के नाम की निंदा होती है, और हमें इसका आभास भी नहीं होता। मसीह के अनुयायी अधर्म को देखते हैं और कहते हैं लोग तो ऐसा कर रहे हैं। कॉर्नियल्स प्लानिंग ने एक पुस्तक लिखी, नॉट द वे इट इज सपोज टू बी। वो कहते हैं पाप का बोध, अवज्ञा का गहन बोध और पाप का दुखद अंगीकार हमारी एक छवि थी। मसीही जन पाप से घृणा करते हैं। वे इससे डरते थे, वे इससे दूर भागते हैं, वे इससे दुखी होते हैं। हमारे पूर्वजों में से कुछ अपने पापों के कारण अत्यधिक दुखी थे। यदि कोई क्रोध करता था तो सोचता था कि वो प्रभु बोझ लेने योग्य है या नहीं। एक महिला जो अपनी बुद्धिमान बहन और सुंदर बहन से ईर्ष्या करती थी, सोचती थी कि ये पाप उसे मुक्ति से वंचित तो नहीं कराएगा। विश्वासियों की ये छवि अब धीमी पड़ती जा रही है। आज आपने पाप किया है, इसका आरोप एक मुस्कुराहट के साथ कहा जाता है, जिसके पीछे मन में ठट्ठे का भाव रहता है। कभी ऐसा समय भी था कि ऐसे आरोप में मनुष्य को दहला देने की क्षमता थी। हमें क्रूस को देखकर स्मरण करने की आवश्यकता है कि पाप कितना अधिक भयानक है। हमें प्रतिदिन ये देखना है। क्रूस हमें स्मरण कराता है कि अनुग्रह कैसा दिन बनाता है। इसका उदाहरण है, हम एक प्यूरिटन के कथन में देखते हैं, हमारे पश्चाताप के आंसुओं को भी यीशु के लहू में धोया जाना चाहिए। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते, हमें प्रतिपल उसके अनुग्रह की आवश्यकता होती है। क्रूस हमें स्मरण कराता है कि हम कभी क्या थे। मुझे पहला पत्रस 1:17-21 बहुत अच्छा लगता है। इन शब्दों पर कृपया ध्यान दें। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपना परदेसी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उससे छुटकारा चांदी सोने से अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल लहू के द्वारा हुआ। आप इसे समझें। अपना जीवन श्रद्धापूर्ण भय से यहाँ व्यतीत करो, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या मूल्य देकर खरीदा गया है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम मात्र प्रार्थना करना छोड़कर अपना जीवन वैसा व्यतीत करना सीखें जैसा वो चाहता है। प्रतिदिन उसके भय में जीवन जीने में वो हमारी सहायता करे, हम ये प्रकट कर पाएं कि ये क्रूस हमारे लिए अनमोल है। पाप के साथ बेपरवाह होकर ये दिखाएं कि क्रूस आपका धन नहीं है जहां आपने जीवन पाया है। क्रूस हमें स्मरण कराता है कि हम पहले क्या थे। दूसरा, हम क्रूस पर गर्व क्यों करते हैं? क्योंकि क्रूस हमें हमारे आज के जीवन से सामना कराता है। यदि हम अपने चार परिदृश्यों, अंतिम भोज, गतसमनी की वाटिका, परित्याग की पुकार और जय घोष का सर्वेक्षण करें, तो हमें इन सच्चाइयों का ज्ञान होगा। क्रूस हमें बोध कराता है कि हम परमेश्वर के लिए जीवित हैं। वो हमारी जगह मरा, हम मृतक थे परंतु अब जीवित हैं। हम पाप के अधीन मृतक नहीं हैं। हम अपने दास नहीं हैं। हम परमेश्वर के लिए जीवित ही नहीं, हमारे पास एक मध्यस्थ भी है। उसका काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमारे पास एक महायाजक है जो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है और इस क्षण भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर चुका है। उसका बलिदान सफल एवं पूर्ण हो गया है। वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा है और हमारे लिए याचना कर रहा है। उसने हमारे अपराध उठा लिए। अब हम परमेश्वर के मित्र हैं। आप और मैं, जिन्हें पापों के कारण नरक मिलता था, अब परमेश्वर के मित्र हैं। उसने हमारे अलगाव को अपने ऊपर ले लिया। हम जो पहले बहिष्कृत थे अब आमंत्रित हैं। जरा सोचिए, नरक के भागी पापी अब परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित हैं। उसकी उपस्थिति में सुरक्षित और स्वागत ही नहीं, उसकी उपस्थिति में प्रसन्नता का कारण भी है। हमें परमेश्वर ने लेपालक बना लिया है। उसने हमारा ऋण चुका दिया है और अब हम मुक्त हैं। हम कभी दास थे परंतु अब पुत्र हैं। मसीही विश्वास में हमारा संबंध परमेश्वर से ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें हर पल दोषी ठहराने के लिए खड़ा है। मसीह ने हमारे दोष अपने ऊपर ले लिए और हम परमेश्वर के साथ पिता पुत्र के संबंध में रह रहे हैं। हम अब अपने पापों के बोझ तले दबे नहीं हैं। यही क्रूस पर गर्व करने का धारण है। तीसरा, क्रूस हमें सिखाता है कि मुक्ति पाने का अर्थ क्या है। क्रूस हमारी धार्मिकता को सिद्ध करता है। गलातियों 2:15-20 में लिखा है कि हम मसीह में कैसा विश्वास रखते हैं, और अंत में देखिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित रहता है। जीवन जो मैं देह में जीता हूं, वो मैं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास में जीता हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब हम व्यवस्था द्वारा धर्मी नहीं ठहराए जाते हैं। वो आरंभ में ही कहता है, मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा। यही धार्मिकता है। मसीह हमारे लिए मरा। हम में तो धार्मिकता का कोई आधार है ही नहीं। मसीह हमारे लिए मर गया। वो हमारे लिए पाप बनाया गया कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर के सामने आप धर्मी कैसे गिने जाते हैं? केवल मसीह में सच्चे विश्वास के साथ। इसकी अपेक्षा कि मेरा विवेक मुझे परमेश्वर की सब आज्ञाओं को तोड़ने का दोषी ठहराता है कि मैंने एक भी आज्ञा नहीं मानी और मैं अब भी दुराचार की ओर झुकाव रखता हूँ। परमेश्वर ने मुझे अपने शुद्ध अनुग्रह से बिना किसी एक भी गुण के मसीह की धार्मिकता और पवित्रता मुझ में प्रतिस्थापित करते हुए मसीह के सिद्ध बलिदान के लाभ के लिए मुझे दे दिया, जैसे कि मैंने कभी पाप किया ही ना हो। उसने मुझ में मसीह की पूरी आज्ञाकारिता भर दी, परंतु मुझे ये अनुग्रह विश्वासी मन से स्वीकार करना है। कई वर्ष पूर्व एक धनवान अंग्रेज ने रोल्स रॉयस कार खरीदी। वो उस कार को लेकर फ्रांस गया। उस कंपनी का विज्ञापन इस प्रकार दिया गया था कि वो सर्वोत्तम कार है, उस कार में कोई समस्या नहीं आती है। परंतु जब वो उस कार को लेकर फ्रांस गया तो वहां वो खराब हो गई। उसने इंग्लैंड में कंपनी को फोन किया और कंपनी ने मिस्त्री हवाई जहाज से वहां भेजा। कार के स्वामी ने बहुत बड़े खर्च की अपेक्षा की थी क्योंकि मिस्त्री दूर देश से आया था। महीनों बीत गए परंतु उसको कंपनी से कोई समाचार नहीं मिला। अंत में उसने कंपनी को पत्र भेजा कि वो कार मरम्मत का खर्चा देने को तैयार है। रोल्स रॉयस कंपनी ने उसे उत्तर भेजा, मैं क्षमा चाहता हूँ श्रीमान जी, हमारे पास आपकी कार की शिकायत का कोई लेखा नहीं है। इसी प्रकार इस जगत के परमेश्वर के पास भी हमारे जीवन की त्रुटियों का कोई लेखा नहीं है। वो आपको देखता है तो उसे मसीह की धार्मिकता दिखाई देती है। ये ऐसा नहीं है कि उसने पाप छिपा दिए थे या उन्हें नहीं देखने का बहाना कर रहा है। क्रूस की यही विशेषता है, उसने सब कुछ उठा लिया है। यही धार्मिकता है। हम धार्मिकता के लिए प्रयासरत नहीं हैं, हम धार्मिकता द्वारा क्रियाशील हैं। ये सब कुछ बदल देता है। कैसे? फर्ग्यूसन ने कहा, हम कैसे आसानी से इस जाल में फंस जाते हैं। हम अपने चरित्र में धार्मिकता के गुण रखने के कारण धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर के समक्ष धर्मी बनने के प्रयास में ना रहें, वरन मसीह में भरोसा रखकर विश्वास करें कि आप परमेश्वर के समक्ष धर्मी हैं। क्रूस हमारी पवित्रता को संभव बनाता है। अब मसीह हम में अंतर्वास करता है। हम मसीह में हैं, मसीह हम में है। ये पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है और परमेश्वर हमारी मुक्ति का कार्य कर रहा है। फिलिपियों 2, अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। हम मसीह के ऋणी नहीं हैं। आप मसीह के क्रूस को देखकर ये ना कहें, मैं मसीह का ऋणी हूं। ये सच नहीं, क्योंकि यदि हम उसके ऋणी हैं तो हम अपने मसीही जीवन में ध्यान देने लगते हैं और उसका उधार चुकाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, मसीह ने तेरे लिए ये सब किया है और तू जो कम से कम उसके लिए कर सकता है वो ये है और ये है। परंतु जैसे ही हम मसीह को ऋण चुकाना आरंभ करते हैं, वैसे ही हम अनुग्रह की जड़ें खोद देते हैं, क्योंकि ऋण उतारा नहीं जा सकता, इसीलिए कि ये अनुग्रह है। हम मसीह के ऋणी नहीं, निवास हैं। ये सच है। जब हम क्रूस की चर्चा करते हैं तो अधिकांश समय हम उसके उन कार्यों की चर्चा करते हैं जो उसने हमारे लिए किए। सच तो यह है कि अब मैं जो भी अच्छा काम करता हूं वो मसीह में आधारित होता है। मैं भविष्य में जो अच्छा काम करूंगा वो भी मसीह में ही आधारित होगा। मेरा सर्वस्व मेरी देह में उसके अंतर्वास पर निर्भर करता है। कुलूसियों 1 में यही सब कुछ लिखा है, तुम में अंतर्वासी मसीह महिमा की आशा है। क्रूस हमारा न्याय सिद्ध करता है, हमारा शोधन संभव बनाता है और हमारी महिमा को सुनिश्चित करता है। उसने जिन्हें पूर्व नियुक्त किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें उसने बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, जिन्हें उसने धर्मी ठहराया उनका महिमान्वित भी किया। मसीह हमारे लिए फिर से आ रहा है। हम इस संसार के लिए नहीं जी रहे हैं, हम आने वाले संसार के लिए जी रहे हैं। उसने एक बार बलिदान दिया कि अनेकों के पाप उठा ले जाए। वो दूसरी बार प्रकट होगा, परंतु पाप उठा ले जाने के लिए नहीं, वरन उन लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए जो उसकी बाट जो रहे हैं। क्रूस पर गर्व करने का चौथा कारण है, क्रूस हम पर प्रकट करता है कि प्रेम करने का अर्थ क्या है। इस प्रकार हम समझ पाते हैं कि प्रेम क्या है। यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और हमें भी अपने भाइयों के लिए जीवन बलिदान करना चाहिए। हमारे परस्पर प्रेम के कारण वे जानेंगे कि हम मसीह के शिष्य हैं। कलीसिया में परस्पर प्रेम करने का अर्थ क्या है, इस विषय पर हमने अंतिम भोज प्रभु भोज के अध्ययन में चर्चा की है। हम क्रूस के निकट एकत्र होते हैं। मसीह में आ जाने का अर्थ है समाज में बदल जाना। हम एक देह हैं, हम एक दूसरे के लिए हैं। हम खोए हुओं में क्रूस का प्रचार करते हैं। आप इस सत्य को अपनाने के बाद क्रूस सत्य का प्रचार ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। हम इस सत्य का प्रचार नहीं करते क्योंकि हम इस सत्य के चमत्कारों को नहीं समझते हैं। गरीबों के लिए हम क्रूस को देह में धारण करते हैं। मसीह यद्यपि धनवान था, हमारे लिए गरीब बना। हमारा संसार से समझौता मसीह यीशु के क्रूस का सहभागी नहीं है। ऐसा व्यवहार मसीह यीशु के क्रूस का प्रदर्शन उस संसार में नहीं करता है जहां बच्चे भूख से और रोग से मर रहे हैं। हम गरीबों के लिए क्रूस को देह में उठाए रहते हैं। 5, क्रूस हमें स्मरण कराता है कि हमारी सुरक्षा इस संसार में नहीं है। सबसे अधिक सुरक्षित स्थान वो है जहां परमेश्वर हमें रखना चाहता है, चाहे वो संसार का सबसे अधिक अंधकार भरा और सबसे अधिक दुर्गम स्थान क्यों ना हो। क्रूस सुरक्षा का साधन नहीं है। क्रूस उठाने से मत डरो, शरीर के घात करने वालों से मत डरो, क्योंकि वे आत्मा का नाश नहीं कर सकते। डरो उससे जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। यीशु मत्ती में अपने शिष्यों से कह रहा है कि जब वे संसार में निकलेंगे तब वे सताए जाएंगे, उनसे घृणा की जाएगी। बहुत कठिन होगा, परंतु शुभ संदेश यह है कि अधिक से अधिक जो वे कर सकते हैं वो यह है कि वे देह का नाश कर सकते हैं। यही इस परिदृश्य की महिमा है। बुरे से बुरा जो हो सकता है वो ये है कि हम मर जाएंगे, जो हमारे लिए लाभ है वे क्रूस के निमित्त होगा। अतः डरे नहीं कि मनुष्य आपको क्या हानि पहुंचा सकता है। मर जाना मसीह की मुक्ति का फल है जो अनंतकालीन है। हम कष्ट उठाने के लिए अब स्वतंत्र हैं। कष्ट उठाने के लिए स्वतंत्र है। फिलिपियों अध्याय 1 में लिखा है कि आपका कष्ट उठाना एक अनुदान है। मसीह के पास आ जाओ और कष्ट उठाने का वरदान पाओ। अपनी महिमा और प्रेम को इस संसार पर प्रकट करने की परमेश्वर की युक्ति सेवक और उसके पुत्र के बलिदान पर केंद्रित है। अतः हम कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर की ये युक्ति हमारे लिए आरामदायक जीवन की है। यदि हमारे लिए सब कुछ आसान और सुलभ है तो हम क्रूस के मसीह को कैसे प्रकाशित कर पाएंगे। ये कष्ट ही है जिसके द्वारा मसीह अपने लोगों में अति स्पष्ट दिखाई देता है। हम कष्ट उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। छठा कारण, क्रूस हमें इस संसार में जीवन का व्यर्थ निवेश करने से बचाता है। फिलिपियों 3 में पौलुस कहता है कि जो कुछ उसके लिए लाभ का था उसने मसीह के क्रूस के लिए कूड़ा समझा। मसीह के ज्ञान की उत्कृष्ट महानता की तुलना में इस संसार का वैभव कूड़ा है। पौलुस स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि इस संसार में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। पौलुस इस संसार के लिए मृतक था। ये संसार उसके लिए जीवन संतुष्टि और आनंद का स्रोत नहीं था। ये हमारे लिए भी नहीं है। ये संसार और इसकी अनमोल वस्तुएं मसीह के ज्ञान की तुलना में गाय का गोबर हैं। इस संसार में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो है वो सब मसीह के पास है। मसीह ये देखने में हमारी सहायता करें कि हमारे जीवन पूर्ण रूप से मसीह को समर्पित हैं। पैसा, मकान, मोटर गाड़ी, अच्छी नौकरी, सुविधाजनक पारिवारिक संबंध आदि सब व्यर्थ हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम देख पाएं कि यदि मसीह हमारे लिए सब कुछ है तो इस संसार में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब आप पूछेंगे कि क्या इस संसार में सब कुछ खोटा है? क्या हमें क्रूस में ही गर्व करना है? यदि हमारा बालक चलने लगता है तो क्या हम गर्व नहीं करें? क्या हम अपने छोटे बालक के या अपनी पत्नी के किसी अच्छे काम पर गर्व नहीं करें? ठीक है, परंतु ये न भूलें कि इस संसार में हम किसी अच्छाई का अनुभव करते हैं तो वो मसीह यीशु द्वारा हमारे लिए क्रूस पर खरीदी गई है। हम अपने पुत्र पुत्री, पति पत्नी, माता पिता में, सफलता में और अन्य किसी भी बात में कुछ अच्छाई देखते हैं तो वो प्रत्येक बात इस सत्य पर आधारित है कि मसीह ने उसे क्रूस पर खरीदा है, क्योंकि हम तो इस योग्य नहीं है। अंतिम कारण, क्रूस हमें आने वाले संसार के दर्शन से संजोता है। मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 5 खोल लें। हम यहाँ पर समाप्त करेंगे अविश्वसनीय परिदृश्य। यहाँ हम यीशु को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 5:1, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर से लिखी हुई थी, और वो 7 मोहर लगाकर बंद कर दी गई। इस पुस्तक के बारे में हम प्रकाशित वाक्य में अनेक स्थानों में देखते हैं। वो ये पुस्तक है जो मुक्ति के इतिहास की परिपूर्णता को और पाप और कष्टों के अंत का अनावरण करती है, और प्रकाशित वाक्य और 22 में नई सृष्टि का उल्लेख करती है। इस दृश्य में एक पुस्तक है और सिंहासन पर विराजमान का दाहिना हाथ है। यूहन्ना क्यों रो रहा था? अब अपने आप को जरा इस संदर्भ में रखकर विचार कीजिए। यह प्रथम शताब्दी के उन विश्वासियों के मध्य में रखिए जो इसे पढ़ते थे, और अति संभव है कि वे सताव सहन कर रहे थे। क्या कोई भी नहीं था जो इसका अंत कर सकता था? क्या कोई भी नहीं है जो पाप और कष्ट, कैंसर और रोगों का अंत कर सकता है? यूहन्ना रोने लगा क्योंकि वहां कोई नहीं था। जगत की यही अंतिम समस्या है। पाप की समस्या का समाधान कौन कर सकता है? हम परमेश्वर के समक्ष इस समस्या के साथ असहाय और निराश खड़े हैं। अमेरिका में चक ई चीज नामक योजनालयों की श्रृंखला है जहां बच्चों के लिए खेलने की भी व्यवस्था है। बच्चे खेल खेलते हैं तो उन्हें टिकट मिलता है। बच्चे उन्हें इकट्ठा करते हैं। जब वे खेल कर वहां से प्रस्थान करते हैं तो वहां एक स्थान है जिसे रिडेम्पशन काउंटर कहते हैं बनाया गया है। वहां नाना प्रकार की वस्तुएं रखी हुई हैं जिनका मूल्य उन टिकटों में होता है। अब एक छोटे बच्चे के पास कुछ टिकट हैं। वो बच्चा वहां रखे एक भालू को पसंद कर लेता है जिसकी कीमत 80,000 टिकट है। बच्चा अपने माता पिता से कहता है, मैं ये भालू लेना चाहता हूँ। माता पिता उसे समझाते हैं कि उसके पास उसके मूल्य के टिकट नहीं है। अब उसकी दृष्टि कुछ नीचे पड़ती है जहां लावा बत्ती रखी है। वो कहता है, ठीक है तो मैं ये लावा बत्ती लूंगा। क्षमा कीजिए, उसकी कीमत 60,000 टिकट है। वो बच्चा धीरे धीरे देखता जाता है और वहां रबड़ रखा हुआ है। बच्चा कहता है, ठीक है मैं यही ले लेता हूं। बच्चे के लिए ये बड़ी निराशा का समय होता है कि उसने घंटों वहां खेला और उसे अंत में भालू नहीं मिला। इसी दृश्य को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित वाक्य 5 में आ जाएं। वहां मनुष्य की मुक्ति सबसे ऊपर के खाने में रखी है। स्वर्ग में पुकार होती है, कौन पुस्तक की मोहर खोलेगा, किसके पास पर्याप्त टिकट है। अब्राहम, तुम पुराने नियम में परमेश्वर की मूसा के पुरखा हो। अब्राहम देखता है कि उसके पास टिकट कम है। मूसा, तुम व्यवस्था लाए हो तो तुम इस योग्य होगे। मूसा देखता है कि उसके पास भी टिकट कम है। फिर भविष्यवक्ता, एक एक करके सबके टिकट कम है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, नहीं, पौलुस ने अनेक पत्र लिखे, उसके पास अवश्य पर्याप्त टिकट होंगे। नहीं, कोई नहीं। यूहन्ना रोने लगता है, कौन जाएगा। तब एक प्राचीन आकर यूहन्ना से कहता है, मत रो, देख यहूदा के कुल से सिंह दाऊद का मूल विजयी हुआ है, वो उस पुस्तक को लेने और मोहरे खोलने के योग्य है। अब इसे उत्पत्ति 49 के साथ देखें, यहूदा सिंह का बच्चा है। एक विजयी सिंह ही नहीं, एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, कठिन मेमना। टाप समझ रहे हैं, एक विचित्र बात है, मेमने जैसा शेर। और हम देखते हैं कि यीशु ही योग्य है कि उद्देश्य को पूरा करे। प्रकाशित वाक्य 5:7, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, अपनी प्रशंसा के टिकट लेकर खड़े हैं और हम किसी योग्य नहीं। हम मुक्ति की लालसा तो रखते हैं, परंतु हमारे पास मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं है। तब अचानक ही एक मनुष्य आकर कहता है, मेरे पास है, मैं मूल्य चुकाऊंगा, और हमारा ऋण शोधन करता है और मुक्ति का इतिहास बनाता है। और यही वो मनुष्य है जिसमें अनंत काल प्रवाहित है। यीशु प्रशंसा के योग्य है। वे नया गीत गाने लगे, पद 9, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। मुक्ति प्राप्त परमेश्वर की कलीसिया हर एक कुल, भाषा, लोग और जाति उसका स्तुतिगान सदा सर्वदा करेंगी। इसका समापन प्रकाशित वाक्य 22:1-5 में है। क्रूस पर इस क्षतिपूर्ति की प्रतिस्थापना के कारण सच्चाई ये है कि वे जो भी पापों में मृत थे एक दिन परमेश्वर के साथ होंगे। वे जो कभी परमेश्वर के कोभाजक थे उसकी आशीषों के वारिस होंगे। वे जो कभी परमेश्वर से दूर थे उसका चेहरा देखेंगे। वे जो कभी पाप और मृत्यु के दास थे जीवन में सदा परमेश्वर के साथ राज करेंगे। हालेलुया, कैसा उत्तम मुक्तिदाता।
अभी तक आप ब्रूक हिल्स में स्थित कलीसिया सीक्रेट चर्च के डॉक्टर डेविड प्लैट के द्वारा दी गई शिक्षा सुन रहे थे।